अगली सूरत कमर है, नजम के बाद कमर। चांद को कहते हैं, बस अब कह लीजिए कि क्यामत की झलकियां, क्यामत का मुंह आंखों देखा हाल है। सूरत कमर, इसका पैगाम है एक, और वो क्या? कुरान को थाम लो अगर उरूज चाहते हो। इस सूरत में बार बार एक आयत आएगी, वलकद यस्सरनल कुरान अले जिक्री, और हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, है कोई थामने वाला? यही है आज के दौर के फितनों का हल। अल्लाह ताला हमें इस किताब को थामने वाला बनाए। बाकी बातें सूरत के साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक्तरबत इस्सात वन्शक्कल कमर वन्यरौ आयतन युरिदु वयकूलु सिहरु मुस्तमिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजजा है जिसका तذکرہ इस सूरत के शुरू में। मक्का वालों ने जब मुतालबे किए तो एक दिन बैठे हुए ये मुतालबा किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इस चांद के दो टुकड़े कर दो हाथ के इशारे से तो हम मान जाएंगे। हालांकि कोई तुक नहीं बनती इस मुतालबे की, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसे दावे नहीं किए, लेकिन अल्लाह जो चाहे। अल्लाह के नबी ने हाथ का इशारा किया, चांद आधा सफा की तरफ और आधा मरवा की तरफ चला। चंद मिनट तक ये मंजर रहा, फिर जुड़ गया। देख लिया, अब मानना चाहिए था। कहा, ना ना, ये तो जादू है, तूने मेरी आंखों पे जादू कर दिया था। उसी का जिक्र है। क्यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, मगर इन लोगों का हाल ये है कि ख्वाह कोई निशानी देख ले मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। उन्होंने इसको भी झुटला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स ही की पैरवी की। ख्वाहिश परस्ती क्या थी उन लोगों की? आबा परस्ती, खानदान परस्ती। हर मामले को आखिरकार एक इंजाम पर पहुंच कर रहना है। इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वो हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफी सामान इबरत है, और ऐसी हिकमत जो नसीहत के मकसद को बदरजाय उतम पूरा करती है, बदरजाय अतम पूरा करती है, मगर तंबीहात इन पर कारगर नहीं होती। पस से नबी इनसे रुख फेर लो। देखिए इशारे हैं, छोड़ दो अब इनको इनके हाल पे। बहुत समझा लिया, बहुत दुआएं कर ली, बहुत इनसे पूछ लिया। जिस रोज पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, लोग सहमी हुई आंख निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे गोया कि वो बिखरी हुई टिड्डियां हैं। पुकारने वाले की तरफ दौड़े चले जा रहे होंगे, और वही मुनकरीन जो दुनिया में इसका इनकार करते थे इस वक्त कहेंगे कि ये दिन तो बड़ा कठिन है। कब्रों से निकलने का मंजर है। आप देखिए अपनी मौत को याद कीजिए, न जाने मैं कहाँ मरूंगी, कहाँ दफन होंगी, किसके साथ मेरी कब्र बनेगी, कल किसके साथ निकाली जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों का हशर तीन गिरोहों में होगा। पहला गिरोह रग़बत करने वाले और डरने वाले, अल्लाह हमें इसी में कर दे। दूसरा, एक ऊंट पर सवार, किसी पर दो, किसी पर तीन, किसी पे चार, और कुछ लोग दस दस लोग एक एक ऊंट पे सवार होंगे जब कब्रों में से निकल रहे होंगे। और फरमाया तीसरा गिरोह बाकी लोगों का, कि जिनको आग जमा करेगी, यानी अहले शिर्क, आग उनके साथ साथ जाएंगी। भागते भागते जब वो थक जाएंगे, कैलूला करेंगे, तो आग भी रुक जाएगी, और जब उठ के भागना शुरू करेंगे तो वो भी भागने लगेगी। क्यामत से पहले एक बहुत बड़ी आग दुनिया में आएगी, उसी की तरफ इशारा है। एक रिवायत का खुलासा है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला बहुत गुस्से में होंगे। जो जितना सब्र करता है ना, फिर जब फटता है तो ज्यादा ही फटता है। दुनिया के लिए ये मिसाल है, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस दिन हमारी इज्जत रख ले। अब एक शख्स जो अल्लाह की खातिर बेकदर हुआ, अल्लाह ने कैसी कदर की उसका तस्करा। फरमाया कज़्ज़ब क़ब्लहुम कौम नूहिन फकज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनूनू वज़्दुजिर। और आप इन आयात को, मैं पीछे भी तस्करा कर चुकी हूँ, जरा सा हजरत नूह के सिनेरियो में सुनिएगा, आंसू निकल आएंगे। कितनी उनकी नकदरी की गई कि अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया। और वो क्या, इनसे पहले नूह की कौम झुटला चुकी है। उन्होंने हमारे बंदे को झूठा करार दिया और कहा कि ये दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। इतनी अजमतों वाला रब का बंदा और झिड़के खा रहे लोगों से। तो कभी दीन के लिए अगर आपको बातें सुननी पड़े तो परेशान ना हो। फदा रब्बहु अन्नी मगलूब उन फंतसिर, आखिरकार इसने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हो चुका, अब तो इनसे इंतकाम ले। ये आज की दुआ भी है। जब जुल्म हद से बढ़ता है ना, तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें मगलूबियत से बचा दे। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली पर सवार कर दिया, यानी कश्ती जो हमारी निगरानी में चल रही थी। इसको हाईलाइट करें, निगरानी में, अल्लाह की निगरानी में जो कश्तियां चलती हैं वो जरूर बचती हैं। ये था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई। इसको अरबी में हाईलाइट कर लें, आपको अच्छा लगेगा। फरमाए जज़ा लिमन का न कुफिर। सच बताएं क्या हमारी नाकदरियां की जा रही हैं आज? हमारी तो इतनी कदर लोग करते हैं कि अपने ऊपर शर्म आने लगती है, रोना आने लगता है। हम हैं क्या और लोग हमारी कितनी कदर करते हैं? सच बताएं अगर हजरत नूह की जगह मैं होती, अपने ऊपर लीजिए, अगर आप कहीं भी दीन के लिए कुछ कर रहे हैं या करने का इरादा है, इतनी ना कदरियों के बाद मैं रहती? हम तो अपनी राय के खिलाफ बात सुन के मचल जाते हैं। हम तो जरा सुन्नी से बीस हो जाए, हमारे तो अंदर से ना आती है, कौन है जो चलता रहेगा? जिसको ये पता है कि तुम्हारी कोशिशें देखी जा रही हैं, आप सच्चे हैं, अल्लाह की नजर में सच्चे रहिए, डोंट वरी। और अगर आप मुखलिस हैं अल्लाह की नजर में, लोगों को क्या दिखाने की जरूरत है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मैं ऐसे लोगों से बेनियाज कर दे। उस कश्ती को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला? हम अपने आप से पूछें, इस साल का दारा कुरान मैंने नसीहत कबूल करने के साथ लेना है, खाली पढ़ के क्या करना है? देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? अल्लाह ताला हमें नसीहत कबूल करने वाला बना। अब इसमें बार बार रियायत आएगी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हम में से अक्सर लोग जो कुरान से भी दूर होते हैं ना, कहते हैं कुरान बड़ा मुश्किल है, डरते हैं, खौफजदा होते हैं, कुछ सुनने से खौफजदा, कुछ बैठने से खौफजदा, कुछ फोकस करने से खौफजदा। किसको नींद का खौफ होता है, किसी को भूख का खौफ होता है, कुछ को यह होता है कि सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे खौफ भी दब जाते हैं, एक खौफ नहीं जाता, और वो क्या है कि मुझे याद नहीं होगा, मेरे मखारिज ठीक नहीं हो सकते, मैं बोल नहीं सकती ठीक, कोई कहेगा तर्जमा नहीं याद होगा, कोई कहेगा ग्रामर नहीं आती। जब कभी आपको कुरान का कोई तकाजा मुश्किल लगे, इस आयत को सोच लीजिएगा, वला कद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री। कुशैरी नाम के एक मुफस्सिर थे, कहते हैं कुरान की तिलावत अल्लाह किसी पे आसान कर देता है, किसी के ऊपर इसका फहम आसान कर देता है, किसी पर इसका हिफ्ज़ आसान कर देता है, किसी पे अमल आसान कर देता है। दुआ करें अल्लाह मेरे लिए ये सब कुछ ही आसान कर दे। चलना, कोशिश करना आपका काम है, बाकी रास्ते अल्लाह बनाएगा। आत ने झुटलाया तो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। हमने एक मुसलसल नहुसत के दिन सख्त तूफानी हवा इन पर भेज दी जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हो। हवा आती, लोगों को उठा के ऊपर से नीचे फेंकती, खोपड़ियां कट के अलग हो जाती, जो उनके लंबे कांत थे वो तनों की तरह पड़े हुए थे। तीसवें पारे में भी हम पढ़ेंगे शायद को, लंबे लंबे कांत जमीन पे पटखे पड़े होंगे, कैसे लग रहे होंगे, जैसे कटे हुए दरख्त हैं खजूरों के, और तकब्बुर वाली गर्दनें सरों से अलग हो गईं। बस देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, फिर है कोई जो नसीहत कबूल करने वाला हो? समूत ने तंबीहात को छुटलाया और कहने लगे, एक अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या अब हम इसके पीछे चलें, इसका इत्तबा हम कबूल करें? तो इसके मानी ये होंगे हम बहक गए और हमारी अकल मारी गई। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स था जिस पर अल्लाह का जिक्र नाजिल किया गया? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और बर खुदे गलत है, अपनी जुबान से खुद गलत है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही ने मालूम हो जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और बर्ब खुदे गलत है। हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं, अब जरा सब्र के साथ देख कि इनका क्या इंजाम होता है। अब देखिए कि यहां थोड़ा सा नोट कीजिए, नबी का अकेला होना और उन्हीं की कौम में से होना कौम को कितना मुतकब्बिर बना रहा है। क्या पता चला कि लोग पीयर प्रेशर पे चलते हैं, चलो तुम उधर जिधर हो हवा। याद रखिए, एक दीन वो होता है जिसके साथ बहुत शोहरतें और बहुत सारी रिवायतें शामिल हो चुकी होती हैं, और ये होता है 5, 10, 20 साल के बाद वो दीन मारूफ हो जाता है। आज मैं चंद नाम लूँ, फौरन समझ जाएंगे ये कौन सी जमात, कौन सा गिरोह। क्यों? जब से पैदा हुए हम वो नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब वो काम कभी शुरू हुआ होगा उस वक्त लोगों ने उसको कबूल नहीं किया होगा। यही बात है इधर, शुरू शुरू के दौर में नेकियों के रिवाज बनाना और रास्ते हमवार करना, ये सिर्फ फितरत सलीमा वाले कर सकते हैं। बाकी लोग सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं कि ये देखो ऊंट देखो, वो क्या कहते हैं, तेल देखो तेल की धार देखो, देखो ऊंट किस करवट बैठता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यारा पैगाम लेकर आए थे, लेकिन मक्का वालों को क्या था, ये अकेला है, हम सब हैं। मसलन एक अकेला कहता है कि सेग्रीगेशन रखो, मिक्स गैदरिंग ना करो, बाकी तो हम सब चाहते हैं मिक्स गैदरिंग हो। देखो बेवकूफ बात है, एक बंदा, चलो इसको पर्दे के पीछे बिठा दो। ये टोन होती है, ये है असल में इम्तिहान, और ये है मेरे और आपके करने का काम। आखिर में पारे के अंदर हमें यही मैसेज मिलने वाला है कि नेकियों के आगाज में चलो, नेकियों का शुरू करो, फाउंडर बनो, बुनियादे बनो। बाद में तो फिर बहुत सारे लोग मिलते जाएंगे। फिर इसके बाद उनके जो ऊंटनी को मारने का वाक्या था उसका तذکرہ था, हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब जरा सब्र के साथ देखो कि इनका क्या अंजाम होता है। इनको जता दे कि पानी इनके और ऊंटनी के दरमियान तकसीम होगा, और हर एक अपनी बारी के दिन पर पानी लेगा। यानी ऊंटनी तो मांग ली, मुआवजा मांगा, पर ये नहीं याद रहा कि अब इसके कुछ तकाजे भी होंगे, खाएगी पिएगी। इसी तरह याद रखिए, बाद जब हम नेकियों के मौके मांगते हैं, लेकिन जब वो आती है हकीकी तौर पे, तो फिर उसके निभा नहीं पाते, फिर कहते हैं ये टू मच है, ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला ने इसी बात को वहां उनके सामने रखा कि ऊंटनी को मारने लग गए हो, तुम्हें क्या हो गया। आखिरकार इन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बेड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसे थे मेरे डरावे। हमने इन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी हुई भाड़ की तरह भुस होकर रह गए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला। लूत की कौम ने तंबीहात को झुठलाया, हमने पथराव करने वाली हवा उस पर भेज दी, सिर्फ लूत के घर वाले इससे महफूज रहे। इनको हमने अपने फजल से रात के पिछले पहर बचाकर निकाल दिया। ये जजा देते हैं हम हर उस शख्स को जो शुक्रगुजार होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से खबरदार किया, मगर वो सारे डरावों को मशकूक समझकर बातों में उड़ाते रहे, कहते थे कोई नहीं आना अजाब, ऐसे ही डराते हो। फिर इन्होंने इसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की, आखिरकार हमने इनकी आंखें मूंद दी। ये भी एक अजाब था कौम लूत पे, पहले अंधे हुए थे, रिवायत में आता है फरिश्ते ने पर मारा, सबकी आंखें निकल गई। 5 अजाब है कौम लूत पे। होमोसेक्सुअलिटी इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह हमारी नस्लों को बचा के रखे। क्या कहा कि चखो मेरे अजाब और मेरी तंबीहात का मजा, सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने इनको आ लिया। चखो मजाब मेरे अजाब को और मेरी तंबीहात का, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला। पता नहीं आप अंदर से क्या जवाब दे रहे हैं इस जुमले को सुन के, कहिए जी अल्लाह हम तैयार हैं, तो हमसे ये नसीहत का काम ले ले। और आले फिरौन के पास भी तंबीहात आई थी, मगर उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुटला दिया। आखिर को हमने इन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है। क्या तुम्हारे कुफार कुछ इन लोगों से बेहतर है, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है, या इन लोगों का कहना यह कि हम एक मजबूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे। अन करीब यह जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे, बल्कि इनसे निमटने के लिए असल वादे का वक्त तो क्यामत है, वो बड़ी आफत और ज्यादा तल्ख साथ है। ये मुजरिम दर हकीकत गलत फहमी में मुबतला है। क्या गलत फहमी थी कि सारे गुनाहों के बावजूद हम बख्शे जाएंगे, और इनकी अकल मारी गई। जिस रोज ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, इस रोज उनसे कहा जाएगा अब चखो जहन्नम की लपट का मजा। हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है, और पलक झपकाते में वो अमल में आ जाता है। तुम जैसे बहुत सों को हम हलाक कर चुके, तो लिहाजा फहल में मुद्दकिर, है कोई नसीहत कबूल करने वाला। वकुल्लु शयइन फालूहु फिज़ ज़ुबुर, जो कुछ उन्होंने किया वो सब दफ्तरों में दर्ज है। ये कौन से दफ्तर हैं? इल्लीयीन और सिज्जीन। وما أدراك ما الليجون كتاب مرقوم يشهده المقربون. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورة متففین. ہر بات ریکڈ پہ ہے. دیکھیے اللہ ریکڈ کیپنگ کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں, ورنہ ہم نے وہاں جا کے بھی ضد شروع کر دینی تھی, میں تو نہیں کیا تھا, میں تو نہیں کیا تھا. اللہ کہتا ہے اپنے لکھے کو خود دیکھ لو. وہ سب دفتروں میں درج ہے, ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے, تقویٰ والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے, سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. یہ انجام اچھا کہ وہ اچھا؟ دیکھیے دنیا میں ایک مومن آن جاب ہوتا ہے, پکی جاب ہے اس کی, اور وہ کیا ہے؟ شہادت حق. کذالک جعلناکم امتا وسطا. اللہ کے پاس پہنچا, ویکیشن پلان شروع. یہ آپ نے پورا اس سورت میں پڑھا, پچھلی صورت میں بھی تھا, ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں بچوں کے ساتھ, شوہر بیوی کے ساتھ, کیونکہ دنیا میں کام کرنا ہے. تو یہ دنیا کام کی جگہ ہے, وہ دنیا آرام کی جگہ ہے. جو یہاں آرام کر رہے ہیں وہاں کا کچھ نہ کچھ گڑبڑ شروع ہو جائے گی. جتنا یہاں کام اتنا وہاں آرام. اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیے دنیا میں بھی ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے, وہاں تو دے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اوپر لے کر سوچیں. اور یہ قائد کو پڑھتی ہوں تو امام ابن تیمیہ یاد آ جاتے ہیں, اپنے وقت کے بہت بڑے استاد اور امام تھے, ان کے شاگرد تھے امام ابن قیم رحمہ اللہ. ان دونوں کو کسی بھی جرم میں قید میں ڈال دیا گیا, قید میں تھے. اور ان کی قیدیں کس نام پہ تھیں آپ کو پتہ ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی کرمنل لوگ نہیں تھے, دین پہ سٹینڈ لینے میں قید میں تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا, 80 بار قرآن پڑھا انہوں نے جیل کی تنہائیوں میں, اور جب 81 بار یعنی 81st time پہنچے تو سورت قمر کی سائد پہ پہنچے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو کہنے لگے کہ ان جنتی معیش, میری جنت تو میرے پاس ہے. کہتے تھے میں جیل میں اتنا خوش ہوں, اور اگر یہ پورا قلعہ جس میں مجھے بند کر دیا گیا سونے کا بن جائے, اور یہ سارا کچھ میں صدقہ کر دوں, اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس جیل میں رہوں. اور جن لوگوں نے ان کو جیل میں بند کیا تھا نا, ان کے لیے دعا کرتے تھے, کہتے تھے اللہ ان کا بھلا کر کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈال کر عبادت کا موقع دیا, اور میری جنت تو میرے پاس ہے, مجھے کوئی نہیں جنت سے دور کر سکتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے نا تو عبادت کا خشوع ختم ہو جاتا ہے. جب بندہ اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر لے, اس کو کون پریشان کرے گا؟ تو اصل بات یہ کہ آپ کو مجھے اپنی فکر لگانی ہے, ختم اچھا ہو جائے. اور دیکھیے یہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ کاؤچز ہیں, فرشتوں کی محفلوں میں بندہ بٹھایا جائے گا. شرط کیا ہے کہ یہاں کچھ کر کے جائے. تو ففروا الی اللہ, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھاگنے والا بنا دے. تلاوت سنتے آخری آیتوں کی.
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
آپ دیکھیں کہ دنیا کو کوئی بادشاہ اگر ہمیں بلا لے اپنے گھر میں پارٹی میں شاید ہمارے پاؤں بھی زمین پہ نہ لگے. ایسے نہیں لگ رہا کہ اللہ نے بڑی خوبصورت مسندیں سجائی ہوئی اور انتظار کر رہا ہے کہ آؤ تم میرے پاس میں تمہاری عزت کرتا ہوں. لیکن یقین تو آئے پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے.